صدقته الذي اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فكلوا مما غنمتم، تو کھاؤ جو کچھ تم کو مال غنیمت سے ملا، حلالاً طیبا، وہ حلال بھی ہے اور وہ پاک بھی ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قرآن پاک کی اس مبارک آیت سے، اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ، اور اس کا تعلق بھی جنگ بدر سے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، بدر میں اللہ نے زوردار کامیابی دی، قریش کے 70 سردار بھی پکڑ لیے اور بہت سارا مال غنیمت بھی آ گیا ہاتھ میں، تو صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے. اس وقت تک مال غنیمت کے حوالے سے کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، مگر صحابہ کرام پھر بھی یہ مال جمع کرنے میں لگ گئے، اور پھر یہ آیت اس دوران نازل ہوئی کہ تم کھاؤ جو بھی مال غنیمت تم کو ملتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. تو حضرت امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ اس وقت بھیجی ہوئی آیت ہے، مگر اس وقت جو آیت نازل ہوئی اس سے پہلے، اس آیت میں کلیئر حکم آنے سے پہلے جو جمع کرنا شروع کر دیا. اگر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ، تفسیر مظہری میں لکھا، ایک ایسا گناہ تھا کہ اس پہ عذاب بھی نازل ہو سکتا تھا، مگر کیونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حکم آ جائے گا کہ مال غنیمت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، تو اس لیے پھر عذاب نازل نہیں ہوا. اس حکم سے پہلے جتنی بھی پہلی امتیں تھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے لیے یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بھی امتیں گزر چکی ہیں وہ مال غنیمت کو جمع کرتی اور اس کے بعد ایک میدان میں رکھ دیتی، آسمان سے آگ اترتی اور یہ سارے مال کو جلا دیتی، تو یہ نشانی ہوتی کہ جی یہ جنگ اللہ کے یہاں، یہ لڑائی اللہ کے یہاں قبول تھی. اور اگر یہ مال نہیں جلتا آسمانی آگ سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے کرنے میں کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ گئی ہے. تاہم یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی مال انسان کی طرف آ رہا ہو، اس کو لینے سے پہلے انسان ضرور اللہ کی طرف دیکھے کہ کیا اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. مشائخ نے فرمایا کہ اسی کو ترک دنیا کہتے ہیں، کہ جب انسان کے پاس مال آئے تو بس مال پہ جھپٹا نہیں لگائے، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت ہے، بلکہ وہ مال کو کے بارے میں سوچے کہ جی اللہ اس سے راضی ہے کہ میں یہ لے لوں، یا اللہ کی ناراضگی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے. اور آج ایسا سوچنا بہت کم ہو گیا ہے، بس جس طریقے سے بس مال آ جائے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول اس پہلے بھی شاید نقل کر چکا ہے، کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ترک دنیا ایک بچے نے سکھا دی. تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو ایک بچہ ترک دنیا کیسے سکھا سکتا ہے، اتنے بڑے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ؟ तो हजरत फरमाया, नहीं, मैंने ये तर्क दुनिया बच्चे से सीखी है। एक बच्चा अपने वालिद के साथ आया और उसने आके जैसे वालिद के साथ खड़ा था, तो बच्चों के लिए मैं कई मरतबा कुछ चीजें मीठी रखता, बच्चों को मीठी चीजें बहुत पसंद, तो कोई मीठी चीज जो उस वक्त ही मैंने उस बच्चे को दी, तो बच्चे का दिल भी चाह रहा था लेने का, मगर उसने अपने वालिद की तरफ देखा कि वालिद इजाजत देगा तो लूंगा, मगर वालिद की तवज्जो नहीं थी उस वक्त बच्चे की तरफ, तो बच्चे ने मुझसे लिया ही नहीं। मैंने फिर कहा कि बेटा ये ले लो। अब वालिद जरा मुतवज्जे हुए, तो वालिद ने अब कहा कि बेटा हजरत दे रहे हैं तो ले लो। फरमाते उस वक्त इस बच्चे ने मुझसे लिया और बड़े शौक से खाया, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि इस बच्चे की जो पसंदीदा मीठी चीज थी वो भी उसके सामने रखी गई, तो अपने वालिद से पूछे बगैर नहीं ली उसने। काश कि हमारे सामने भी इस दुनिया का माल जब रखा जाता है तो हम भी अल्लाह की तरफ देखें और उससे पूछें कि या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए जायज़ है तो लूं, अगर तू उसको पसंद नहीं करता तो मैं छोड़ दूं। अल्लाह अकबर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तर्क दुनिया हमने एक बच्चे से सीख ली। ये जो माल की बदउनवानी है, हराम माल इस्तेमाल कर लेना या हराम तरीके से माल को कमा लेना, ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसके असरात भी बहुत ज्यादा है, इसके पे वईदे भी बहुत ज्यादा, मगर इस गुनाह को हम करते भी बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी वईदे हैं कि जो शायद ही किसी और गुनाह पे इतनी बड़ी वईद। हदीस पाक में आता है कि जिसने हराम लुकमा खा लिया, एक लुकमा हराम का खा लिया, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह। एक हदीस में आता है कि सूखे से जिसने माल कमाया, ये ऐसा बड़ा गुनाह है जैसे कि माँ के साथ जिना करने वाला गुनाह। अल्लाह, अपनी वालदा के साथ जिसने जिना किया, ये वो गुनाह के तरह है कि जिसने सूद के जरिए से माल कमाया। और हराम खाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान की तबीयत जो है वो नेक आमाल की तरफ माइल नहीं होती। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूलों को मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, या अय्युहर रुसुल, ए रसूलों की जमात, कुलू मिन तय्यिबातिन, तुम खाओ हलाल में से, वअमलू सालिहा, और नेक आमाल करो। तो जब इंसान हलाल खाता है तो नेक आमाल करता है, हलाल नहीं खाता फिर बदआमालियां करता फिरता है। तो इतनी बड़ी बड़ी वईदे हैं इस हराम माल के खाने पे, मगर जितनी ये बड़ी वईदे हैं, बदउनवानियां माशरे में उतनी ही ज्यादा होती जा रही है। हर तबके का शख्स जो है इस माली बदउनवानी में मुलविस। ये हमारी फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी को टच करी, हमारे इस माशरे के अंदर ये एक नासूर फैल चुका है कि बस जिस तरह माल आ जाए, इंसान माल के इस जाल में फंस चुका है। कई मरतबा तो इंसान प्लान करके करता है कि जी मैंने बस ये माल इन जराए से हासिल करना है, कई मरतबा इंसान मजबूर होता है, जाहिर है एक गरीब मुल्क के अंदर लोगों की बहुत सारी मजबूरियां, मगर शरीयत कहती है गरीब हो अमीर हो माल हलाल खाना है। आज से कुछ साल पहले हॉक्स बे के बीच पे जाना हुआ, तो वहां हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने हॉक्स बे के जो नाजिम साहब थे, उस जमाने में हर इलाके का एक नाजिम होता था, तो नाजिम साहब से मुलाकात करवाई, नाजिम साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती मोहब्बत हुई। तो नाजिम साहब नेक आदमी थे, तो उन्होंने अपना वाकया बताया। नाजिम साहब माशरे में बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे काम करते थे, सोशल वर्क जिसको कहते हैं, फलाही काम करते थे। तो नाजिम साहब ने खुद ये वाक्या सुनाया कि जी मुझे हर बंदा मेरे ऊपर बड़ा एतमाद करता था कि मैं इतने फलाही काम, इतनी बच्चियों की शादियां करवाना, तो लोगों की मदद करना, तो बच्चों की तालीम की फिक्र करना, उसके लिए पैसे इकट्ठे करके देना। तो लोग मुझे, जो अमीर इलाके के थे, वो मुझे अपना माल देते थे कि आप गरीबों पे खर्च करते हैं तो हमारा भी खर्च कर दें। कहते हैं ये माल मैं संभाल के रखता था और जैसे जैसे जरूरत होती तो खर्च करता। कहते कई मरतबा मेरे अपने घर में ऐसी माल की तंगी आ जाती कि मैं कई मरतबा मजबूर हो गया इस माल को खर्च करने पे। तो अल्लाह के यहाँ शर्म भी आती कि मेरे लिए जायज तो नहीं है ये, और बहुत अपने आप को कोसता रोता भी, मगर ये गलती बारहा हो चुकी। फरमाते एक मरतबा अल्लाह से खूब दुआ की कि या अल्लाह बस इस गलती से निकल आओ। फरमाते अल्लाह ने दिल में डाला, अब जो भी मुझे कोई पैसे देता मैं एक उसे बोतल के अंदर, जैसे पेप्सी की और ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें होती ना, उसमें डाल देता, और जब पूरी भर जाती तो फिर उस बोतल को काटता और उसमें से पैसे निकालता। इस अमल के करने से जब एक मरतबा पैसे अंदर चले जाते तो हाथ से बाहर निकल नहीं सकते थे, मेरी अपनी जरूरत भी होती तो भी मुझे पता है मैं निकाल नहीं सकता, मुझे बात बोतल काटनी पड़ेगी, और काटने तक जो है वो मेरी हिम्मत नहीं होती। तो इस अमल के करने ने मुझे इस गुनाह से बचा लिया, तो ये पक्की बात है। इंसान कई मरतबा इस गुनाह के अंदर खिंचा चला जाता है, कई मरतबा अपनी ख्वाहिश की वजह से, कई मरतबा अपनी मजबूरी और जरूरत की वजह से। अब क्योंकि ये माशरे में इतना ज्यादा है, कई मरतबा ख्वातीन भी इस गुनाह में मुलव्वस के, जहां माली मामलात होते हैं वहां ये गलती कि जो माल अमानतन है उसको खयानत करके इस्तेमाल कर लिया, इस गुनाह में इंसान मुलव्वस हो जाता है। तो इससे निकलने के तरीके क्या हैं? तो मुजाहिद ने फरमाया कि उसूल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला उसूल तो ये है कि अपनी जरूरियात को मुख्तसर रखे। कई मरतबा इंसान बस कहता है कि नहीं, घर यूं होना चाहिए, गाड़ी यूं होनी चाहिए, फर्नीचर यूं होना चाहिए, कपड़े यूं होने चाहिए, हर दावत के अंदर एक नए कपड़े पहन के जाने ही है। जब खर्चे इस तरह से करेंगे तो फिर उसके लिए तो फिर हलाल काफी नहीं होगा। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम है, उनसे किसी ने कहा कि जरा दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला बहुत माल दे और हलाल दे। अल्लाह अकबर। हजरत ने आगे से फरमाया कि बहुत सारा माल जो है ना वो हलाल नहीं होता है कभी भी। तो इसलिए अगर कोई शख्स हलाल ही खाना चाहता है तो दो उसूल हैं। पहला उसूल ये कि अपनी जरूरियात को मुख्तसर रखे। कम जरूरियात वाला शख्स जो है वो ही हलाल से अपनी जरूरतें पूरा करेगा, ज्यादा जरूरियात, ज्यादा ख्वाहिशात, हर चीज बड़ी बड़ी करनी है तो उसूली बात तो यही है, फिर वो हलाल से नहीं होता, हराम शामिल हो ही जाता है। और दूसरी चीज, और इस चीज में खास तौर पे तवज्जो करना जो है, यानी जरूरियात को मुख्तसर करने के हवाले से, इसमें तवज्जो जो है वो ख्वातीन करें कि माल के मुकाबले से बचे। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि बस किसी का कोई कपड़ा देखा बस सारा वक्त दिमाग में कोई घूम रहा है कि मैंने भी ऐसा ही बनाना है, जी का फोन देख लिया भाई इसके पास ऐसा फोन है ना, कुछ भी करो, वालिद से लड़ना है तो वालिद से लड़ो, शोहर से लड़ना है तो शोहर से लड़ो, बस मुझे ये फोन चाहिए भाई। ये जो माल का मुकाबला है ना, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि तुम दुनिया के मामलात में अपने से बेहतर वालों को ना देखा करो कि उसका फोन अच्छा है, तो उसका घर अच्छा है, तो उसकी गाड़ी अच्छी है, अपने से नीचे वालों को देखा करो कि फलां शख्स के पास तो चप्पल भी पहनने को नहीं है, करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि पैदा होने से लेके मरने तक वो कभी एक चप्पल की जोड़ी नहीं खरीदते। अल्लाह हू अकबर, करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पूरे दिन में एक बिस्किट पे गुजारा कर रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले एक बिस्किट तैयार करते हैं जिसके अंदर विटामिन और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होती है, मगर उस बिस्किट पे पूरे दिन में गुजारा होता है। और हम जो ये सोचते हैं कि जी मेरे पास यूं घर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अपना होना चाहिए, किराए पे कब तक रहूं, ये जो सारी रोना धोना है, सिर्फ गजा और सूडान को देख लें कि घरों के क्या हाल हुए हुए हैं। करोड़ों लोग बने बनाए घर तोड़ फोड़ के बैठे हुए हैं टेंटों के अंदर। अल्लाह अकबर। तो माल के मामले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अपने से ऊपर वालों को देखो, शुक्रगुजारी आएगी कि जो अल्लाह ने दिया बेहतरीन दिया। तो अपनी जरूरियात को मुख्तसर करें और माल के मुकाबले से बचें। और दूसरी तीसरी चीज ये कि माल के मामले में उसूल बनाए। जैसे ये हॉक्स बे के नाजिम साहब जो थे, उन्होंने उसूल बनाया कि जी मैंने तो ये डब्बे में रखना है, फला जगह फला मौके पे मौजूद ही ना हो कि मुझे माल हाथ में लेना पड़े। हमारे अकाबरीन माल से डरते थे, एक बार तो भाई हाथ में आया तो ये गलत इस्तेमाल हो जाए। आज तो हर बंदा कहता नहीं मेरे हाथ में माल दो। आज से 2-3 साल पहले, जैसे इस हफ्ते के दिन हमारी खत्म बुखारी का प्रोग्राम हुआ ना, सिर्फ मैं उसूल की बात बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह से 2-3 साल, हर साल होता है, 2-3 साल पहले खत्म बुखारी के प्रोग्राम में हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन दामद बरकातहू, जामिया मदनिया लाहौर, तो मुल्क के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, तो तशरीफ लाए। अब हम हमेशा तो यूं नहीं करते, मगर कभी कभी ऐसा करते हैं कि कोई आता है तो उसको हदिया देते हैं। तो हदिये में कई मरतबा कोई चीज होती है। ये पहली मरतबा था कि हमने कैश रखा, पैसे रखे कि जी जो भी आए हैं मेहमान उनको, और हदिये की कोई सूरत हाल बन नहीं रही थी तो कैश दिया। हजरत ने बयान मुकम्मल फरमाया तो हजरत को भी एक शील्ड दी और इस आजिज ने कैश दिया। उन्होंने पूछा इसमें रकम है? इस आजिज ने अर्ज किया जी हजरत रकम है। फरमाया नहीं, ये मेरा उसूल नहीं है कि बयान करके फौरन रकम लूं उस बयान के बाद। तो हम कहते कि हजरत ये और कुछ नहीं सिवाय ये कि ये आपके लिए हदिया। फरमाया नहीं, ये मेरे उसूल के खिलाफ। तो माल जो गलत माल है, हराम माल है, उससे बचने के लिए उसूल और जवाबित नहीं बनाएंगे, कहेंगे बट ठीक है देखी जाएगी जब ऐसा वक्त आएगा, तो फिर इंसान फंस ही जाता है। आखिरी बात, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है?
जी
जी
आ रही है,
सर,
आ रही है।
रही। हजरत एकदस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक नवाब साहब ने, हजरत कई वाकया तो मैं सुना चुका हूँ, हजरत मौलाना कासिम नौनौती रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया है, एक साहब ने आपको माल देने की कोशिश की, मगर साथ साथ ये महसूस हुआ कि जी ये माल दे रहे हैं और थोड़ा तकब्बुर कर रहे हैं, हजरत ने ये माल कबूल नहीं किया। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने जाके बाहर हजरत की जूती के अंदर ये पैसे रख दिए। حضرت مسجد سے باہر تشریف لائے اور جوتی میں پیر ڈالا تو آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ چیز ہے، جب نکالا تو وہ پیسے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جب انسان دنیا کو لات مارتا ہے تو دنیا اس کے پیروں میں آ کے گرتی ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ہے اس مال کے ساتھ۔ اس مال کا معاملہ عجیب ہے، بہت سارے اچھے سمجھدار لوگوں کو بھی اس مال میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اصول و ضوابط اس مال کے حوالے سے بنائے۔ صحابہ کرام جیسی ہستیاں جو ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اس مال کی وجہ سے، تو ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، تو اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، یا اللہ اس مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، یا عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ جو کچھ تم کو مال غنیمت ملا حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ یہاں کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربي العلى الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم